नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। एप्पल फैंस का इंतजार आखिरकार खत्म होने वाला है। 7 सितंबर 2022 को क्यू पेट्रिनो की ये कंपनी फार आउट इवेंट में आईफोन 14 सीरीज से पर्दा उठाएगी। एप्पल 2 साल के बाद फिजिकल इवेंट का आयोजन कर रही है। पिछले दोनों साल 2020 और 2021 में कोविड-19 के चलते ये इवेंट ऑनलाइन ही आयोजित हुआ था। इवेंट को एप्पल की आधिकारिक वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर लाइव किया जाएगा। एप्पल की फार आउट इवेंट की शुरुआत भारतीय समयानुसार रात 10:30 से शुरू होगा। एप्पल का इवेंट आमतौर पर 2 घंटे या ज्यादा समय तक चलता है, इसीलिए उम्मीद है कि इवेंट रात 12 या 12:30 तक खत्म होगा। एप्पल पार्क में कंपनी द्वारा नई सीरीज में 4 नए आईफोन 14 मॉडल्स लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। एप्पल आईफोन 14 सीरीज के प्रो मॉडल्स में नोटिफिकेशन के लिए ऑलवेज ऑन स्क्रीन भी मिल सकती है। बता दें कि एंड्रॉइड में ये फीचर पिछले कई सालों से मौजूद है। एप्पल के हाई एंड आईफोन 14 में सैटेलाइट कनेक्टिविटी ऑप्शन भी मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि भारत आर्कटिक मामलों में रूस के साथ भागीदारी को मजबूत बनाने को लेकर गंभीर है। उन्होंने ये भी कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग की काफी संभावनाएं हैं। रूस के व्लादिवोस्तोक में आयोजित पूर्वी आर्थिक मंच के पूर्ण सत्र को ऑनलाइन संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि भारत यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से ही कूटनीति और बातचीत का रास्ता अपनाने की जरूरत पर जोर देता रहा है। वह संघर्ष को खत्म करने के सभी शांतिपूर्ण प्रयासों का समर्थन करता है। बैठक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2019 में मंच के शिखर सम्मेलन में अपनी मौजूदगी को याद करते हुए कहा कि भारत ने उस समय अपनी एक्ट फॉर ईस्ट नीति की घोषणा की थी और इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में रूस के सुदूर पूर्व क्षेत्र के साथ भारत का सहयोग बढ़ा। उन्होंने कहा, ये नीति अब भारत और रूस के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख हिस्सा बन गई है। मोदी ने कहा, इसी महीने व्लादिवोस्तोक में भारत के वाणिज्य दूतावास की स्थापना के 30 साल पूरे हो रहे हैं। भारत इस शहर में वाणिज्य दूतावास खोलने वाला पहला देश था। तब से ये शहर हमारे संबंधों में कई प्रमुख उपलब्धियों का गवाह रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डी सुब्बा राव ने सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के लिए सरकार को 10 साल का खाका तैयार करने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि ये रूपरेखा या खाका हितधारकों को बहुत जरूरी अनुमान मुहैया कराएगा। सुब्बा राव ने आगे कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के लिए बहुत बड़ा दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन साथ ही इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में भी नहीं रखा जाना चाहिए। उन्होंने पीटीआई भाषा से कहा, आदर्श रूप से हमारे पास सभी पीएसबी का निजीकरण करने के लिए शायद 10 साल की समय सीमा में एक खाका या रूपरेखा होनी चाहिए। इससे सभी हितधारक स्थिति का अनुमान लगा सकेंगे। अमेरिका, यूरोपीय संघ समेत विकसित देशों के कमजोर मांग की वजह से इंजीनियरिंग, रत्न आभूषण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से निर्यात प्रभावित हुआ है। आगामी महीनों में यदि वैश्विक स्थिति बेहतर नहीं होती तो इसका भारत के निर्यात पर और असर पड़ने की आशंका है। विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक मुद्रास्फीति, रूस यूक्रेन युद्ध, चीन और ताइवान के बीच बढ़ता तनाव और आपूर्ति व्यवधानों से दुनिया भर में आर्थिक वृद्धि प्रभावित हो रही है और यही कमजोर मांग की वजह है। विश्व व्यापार संगठन ने अप्रैल में अनुमान जारी करके कहा था कि विश्व व्यापार 4.7% की दर से बढ़ेगा, लेकिन अब 2022 में इसके 3% की दर से बढ़ने का अनुमान है। CBDC से सीमा पार लेन देन के लिए समय और लागत में कमी आएगी। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर ने बुधवार को ये बात कही। CBDC को इस साल पेश किया जाना है। केंद्रीय बैंक ने CBDC को इस साल पायलट आधार पर पेश करने का प्रस्ताव दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा लाने की घोषणा की थी। वित्त मंत्री ने 2022-23 के आम बजट में कहा था कि RBI चालू वित्त वर्ष में रुपए के समान एक डिजिटल लाएगा। उन्होंने इंडिया IDIs समिट में कहा, हमें समझना होगा कि CBDC का अंतर्राष्ट्रीयकरण भुगतान के मसले के लिए महत्वपूर्ण है, जिसका समाधान इस समय G20 और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स जैसे निकाय तलाश रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत में एक उत्कृष्ट, सस्ती और तेज घरेलू भुगतान प्रणाली है, लेकिन इसके बावजूद सीमा पार भुगतान की लागत अब भी अधिक है। उन्होंने कहा कि लागत और गति दोनों में सुधार की काफी गुंजाइश है। अगर आप इंडेन एलपीजी के कस्टमर हैं तो बुकिंग और डिलीवरी को लेकर हो रही समस्या पर कंपनी की ओर से अपडेट जारी किया गया है। कंपनी का कहना है कि गैस सिलेंडर की बुकिंग और डिलीवरी सिस्टम को ठीक करने के लिए काम किया जा रहा है। जल्द से जल्द यूजर्स के लिए सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कंपनी ने एक नोट में कहा कि IBM इंडिया द्वारा प्रतिबंधित इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की एलपीजी बुकिंग और वितरण प्रणाली पिछले 2 दिनों से बाधित है और वर्तमान में ये प्रणाली ठीक हो रही है। इसमें कहा गया है IBM और ओरेकल के साथ इंडियन ऑयल सिस्टम को जल्द से जल्द बहाल करने के लिए काम कर रहा है। हालांकि अन्य माध्यमों से भी कंपनी के ग्राहक एलपीजी के लिए बुकिंग करा सकते हैं। ग्राहक SMS या IVRS नंबर के जरिए बुकिंग करना जारी रख सकते हैं। इसके अलावा कस्टमर व्हाट्सएप नंबर के जरिए मैसेज के जरिए भी बुकिंग कर सकते हैं। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।